اگلی صورت بہت لائٹ ہے، ڈیلیکیٹ ہے، اس کا نام سن کر تو آپ خوش ہو جائیں گے. صورت زخرف. کس کو کہتے ہیں زخرف؟ سونے کو. سونے کو نہیں، ٹو سلیپ نہیں، گولڈ. تو یہ سونا گولڈ ہے. بناؤ کو کہتے ہیں اصل میں کوٹنگ کرنا، کوٹ کرتے ہیں نا، گولڈ پلیٹڈ ہے. تو اس میں انشاءاللہ آپ کے میرے لیے بہت خوبصورت احکامات ہیں. یہ شروع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کے لیے سونا چھوڑتے ہیں تو آپ ہمیں سونا دینا جنت کا. اب وہ جنت کا سونا کیسا ہوگا، کیا ہوگا، اس کو چھوڑیں، لیکن بس ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اپنی نیند کو کم کرنے والے بن جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. والکتاب المبین. قسم اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا. بار بار یہ جملہ سن کر دل میں خواہش آتی ہے نا کہ اللہ ہمیں بھی قرآن کی عربی آئے. تو جب بھی کوئی آیت ایسے جملے سے شروع ہو نا، قرآن عربی یا قرآن عربی، تو دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے یہ عربی سمجھ آ جائے. اور یہ دنیا کی سب سے پیاری دولت آپ کے لیے بن جائے گی جب آپ کو قرآن عربی میں سمجھ آئے گا. فرمایا کیوں دیا؟ تاکہ تم لوگ اسے سمجھو. ہائی لائٹ کریں. ہم لوگ کیا سمجھے تھے آج تک؟ قرآن کیوں دیا؟ تاکہ چومو، اس کے تعویذ بناؤ، اس کی آیتیں لکھ کر دیواروں پہ لگاؤ، بیٹی کی شادی پہ سر سے گزارو. اللہ کہتے ہیں لعلکم تعقلون. کتنے کم لوگ ہیں جو اس کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں. در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو؟ یہ اپنی زبان میں ایسے ہی ہے کہ اب ہم تمہیں قرآن سکھانا چھوڑ دیں کہ تمہیں اس کو سننا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب اس کتاب پہ عمل نہیں کر رہے، اس پہ غور نہیں کرتے، تو کیا اب ہم چھوڑ دیں قرآن کا اترنا؟ یہ تو نہیں ہوگا. دیکھیے جتنی مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی قرآن کے نزول کے موقع پہ، اللہ تعالیٰ غصے میں آتے کہتے چلو بھاگ جاؤ، کوئی کتاب نہیں دینی. پھر 114 صورتیں نہ ہوتی، مکی صورتیں پوری نہ ہوتی، اللہ کہتا ہے چلو اے نبی چھوڑو، آپ کو میں جنت دیتا ہوں، آپ ان کو چھوڑو ان کے حال میں. تو اللہ کبھی پیئر پریشر میں نہیں آتا. ایک بندہ بھی نہ قرآن کو مانے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ تو وہی ہیں جو مان کے اللہ کی نظروں میں خوبصورت ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم آپ کی باتوں میں آ کر چھوڑتے نہیں ہیں. پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بار ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی نبی ان کے پاس آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. تو لکھ لیں آپ کا بھی مذاق اڑایا جائے گا جب آپ اس وحی پر عمل کریں گے. پھر جو لوگ ان لوگوں سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں، یعنی جو بلی کرے گا دین کے اوپر عمل کرنے والے کی، اللہ اسی سے خود نبٹ لے گا. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا، وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا. اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم اس کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کیا کرو. کیا پتہ چلا؟ گاڑیوں میں بیٹھتے ہی اللہ کا احسان یاد کریں. کس نے یہ گاڑیاں دی، کس نے یہ نعمتیں دی، کس نے لینڈ کروزر دی، اور کس نے مجھے اتنی برانڈیڈ گاڑی دی، اس کا احسان ادا کرو. اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. یہ ہے وہ دعا جس کو ہم میں سے اکثر لوگ سفر کی دعا کے نام سے جانتے بھی اور پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی آیتوں کے ساتھ شروع میں سبحان اللہ، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے، سواری پہ چڑھتے، سوار ہوتے وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ اور اللہ اکبر، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے، تو اس کے بعد سفر کو شروع کرتے. تو آج مجھے اور آپ کو بھی پڑھنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ اللہ گاڑیوں میں بیٹھنے سے نہیں روکتا، اللہ تمہیں اپنی پسند کی گاڑی رکھنے سے نہیں روکتا، لیکن کہتا کیا ہے کہ جب تم ان گاڑیوں میں بیٹھو تو تکبر نہ کرو، गर्दन ना कट जाए कि मैं तो मर्सिडीज में बैठी हूं, मेरी गाड़ी ऐसी, और छोटी गाड़ियों को ऐसे ही रास्ते से हटाता ना जाए कि तुम्हें क्या हक है इस सड़क पे आने का, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पीछे इतनी बड़ी गाड़ी है। जब अल्लाह के एहसान समझते हुए अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं ना, तो लोगों को वो नेमतें और खूबसूरत लगती हैं। आप इमेजिन कीजिए, मर्सिडीज गाड़ी और उसमें से एक औरत निकाब में उतरती है, ये है सोने पे सुहागा। एक मर्द निकलते हैं और उनकी इतनी खूबसूरत सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है, और बच्चे निकलते हैं और उनके अखलाक कितने प्यारे लगते हैं। ये अल्लाह चाहता है आपसे। अल्लाह को आपकी मर्सिडीज से कोई चिढ़ नहीं, वल्ला ही आपको लैंड क्रूजर से कोई नहीं रोकता, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं इन पे बैठकर मेरे काम करो। वो गाड़ियां जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो मस्जिदों के आगे और मदरसों के आगे जाके रुकती हैं, लोगों के दिल बैठते हैं कि अच्छा, पैसे वाले होकर भी ये जमात की नमाजें पढ़ते हैं, पैसे वाले होकर भी ये कुरान के लिए निकलते हैं। तो अल्लाह इन चीजों का अच्छा इस्तेमाल मुझे और आपको सिखाता है। कभी कभी इंसान को छोटी गाड़ी में भी बैठना चाहिए, क्यों कि जब बहुत दफा हम बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ जाते हैं ना, तो हमारे अंदर एक रौनक भी आने लगती है। बैठते ही पहले गाड़ी चलाने से एसी चलाते हैं, कभी कभी अंधेरे में पसीने में तो बैठे। तकबुर तोड़ना है असल ये मसला है। कभी रिक्शों में बैठे, पाकिस्तान जाए ना तो जरूर बैठिएगा, टांगे में बैठे, रिक्शे पे बैठे, कभी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठे। चलो सब अपने रिश्ते, वो तो आपके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां पेश करने को तैयार, कहते नहीं मैं रिक्शे पे जाऊं, क्यों, तकबर टूटे, पढ़ा नहीं होना। कभी गाड़ी में बैठते जरा चाल बदलने लगे और गाड़ी की चाबी घुमाएं और सेल फोन हाथ में लें, तो फौरन इस्तगफार करें, क्योंकि वमा कुन्ना लहू मुकरनीन। वल्ला ही ये मौजज़ा जो रोज होता है हमारे साथ, हम इतने खतरों से निकल कर अमन से अपनी जगहों पर पहुंच जाते हैं, हाथ से होते होते बचते हैं, ये अल्लाह की शान है। तो हमेशा आप कैसे करें, रात जब अपनी गाड़ी में बैठेंगे ना, इन आयतों को याद करके दुआ पढ़िएगा, सुभान अल्लज़ी सख़्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। कहाँ हमारी ताकत ये चार पहियों पे घूमती हुई गाड़ी आपको मुझे खैर और आफिया से कहीं उतार दे। फिर फरमाइए, सब कुछ जानते और मानते हुए भी इन लोगों ने इसके बंदों में से बास को इसका जुज बना डाला। हकीकत एक इंसान खुला एहसान फरामोश है कि अल्लाह ने अपनी मखलूक में से अपने लिए बेटियां मंतखब की और तुम्हें बेटों से नवाजा, और हाल ये है कि जिस औलाद को ये लोग खुदा रहमान की तरफ मंसूब करते हैं, इसकी विलादत की खबर जब खुद इनको मिलती है तो उसके मुंह पर स्याही छा जाती है, वो गम से भर जाता है। इशारा किधर है, बेटी की पैदाइश की तस्वीर नहल में पढ़ चुके कि खुद तो बेटी की खबर सुन के इसका रंग काला हो जाता है गम से, कि अल्लाह के हिस्से में वो औलाद आई जो जेवरों में पाली जाती है और बहस और हुज्जत में अपना मुद्दा पूरी तरह वाजे भी नहीं कर पाती। ये किसकी बात है, ये आपकी बात है। लोग इस आयत पे नाराज हो जाते हैं, देखो अल्लाह ने औरतों की बेइज्जती की है, इनको तो जी जेवर पहनने का शौक है और झगड़े में तो अपनी बात ही नहीं बयान कर सकती। चलिए दोनों को ले लीजिए, जेवर पहनना बेवकूफी है, बिल्कुल भी बेवकूफी नहीं है। अल्लाह ने एक धात सिर्फ आपके जेवरात के लिए रख दी, कोई बुरी बात नहीं है, डोंट वरी, चले उसको तो छोड़ दें। दूसरी बात, कोई आपको कहता है देखो बाहू फिल हिसामी गैर मुबीन, तुम्हें पता है तुम्हारा कुरान जिसको तुम बड़े शौक से पढ़ती हो, अल्लाह ने उसमें कहा ये देखो औरतें जब झगड़े का मौका आता है तो अपनी बात ही नहीं बयान कर पाती, रो रो कई आधी बात करती, क्या बताऊं क्या बताऊं क्या, भाई कुछ बोलो तो सही, कैसे बोलूं, फिर होना शुरू हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए जरा इस जुमले को दूसरी तरह लीजिए, अल्लाह के वो औरत जो खूब झगड़ालू है, खूब तड़तड़ाके से जवाब देती है, टक टक बोलती है, अच्छा लगता, ये तो खूबी औरत की कि उसको बात ही नहीं करनी आती। से आप देखिए मियां बीवी का जब मामला चलता है एंड पे रोता कौन है, और अगर आपके मियां रोने लग जाएं आपको तो पता नहीं क्या होने लग जाए। शुक्र ये डेलिकेसी बताई, देखिए हर नरम चीज होती है ना झुकी हुई अच्छी लगती है, कोई भी घर में चीज लाते हैं कोई शाख तो क्या कहते हैं झुकी हुई हो, तो औरत तो खूबसूरत लगती है झुकी हुई। या फिर मैं बात करूंगी तरबियत के नाते से, शायद किसी को फायदा हो। आज तरबियत के अंदाज में ये झुकाव नहीं रहा, बजाहर बड़ी हम्बल बच्चियां भी अंदर से इतनी सख्त और स्टबन होती, तुर्की ब तुर्की शोहर को जवाब देती हैं। पहले लोग तो जवाब देते थे बोल के, अब देते हैं लिख के, कहां मैसेजेस में, वल्लाही कतर कतर अंदर बड़ाई नहीं होगी ना। देखिए जब तक आप अपने शोहर को अपने से बड़ा नहीं समझेंगे ना, आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे। चूंकि आजकल के शौहर जरा ज्यादा ही बेचारे आपको कंपनी देने के लिए बराबरी पे ले आते हैं, वो आपको शुरू से ही इतना लाडला बना लेते हैं कि बस आप जैसा कोई को हीरे की कनी तो मिल गई है ना। इसी से औरत और लड़की, औरत को बल्कि लड़की कहूंगी, औरत बनने तक तो काफी समझ आ चुकी होती है। लेकिन वल्लाही आप सब बच्चियों को नसीहत करूंगी, आपको अच्छे से अच्छा शौहर मिले या बिगड़े से बिगड़ा शौहर मिले, और अल्लाह करे ऐसा कभी ना मिले, कभी अपने आप को उसके बराबरी पे लाके तड़ तड़ ना बोले। बोलेंगी तो सुनेंगी, लिखेंगी तो आगे से फिर वो भी लिखेगा। घर टूट जाएंगे आपके, किसी जगह को आप शक्ल दिखाने वाली नहीं रहेंगी। जो लोग अच्छी चीजों की कदर नहीं करते ना, फिर वो रोते हैं, और फिर अल्लाह उनके लिए जरूर कोई आजमाइश लाता है अगली जिंदगी में। हमारे यहां बड़े लोग कहते थे, कभी ठंडे दूध को फूके ना मारो। मैं बस दफा सोचती हूँ कि आज जो तरबियत है, या अल्लाह जाने क्या अंदर खुन्नस भरा हुआ है कि ठंडे दूध को फूके मारते हैं। हम चाहते हैं हर चीज हमारे मर्जी की हो, आई बिकॉज दिस, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस। एक बात है, आपको नहीं पसंद आया ना, कोई धोखा हो गया, शराबी कबाबी मिल गया, बात भी समझ आती है। आदतों का फर्क, तो वो तो भाई बहन की भी फर्क है, दो बहनों की फर्क है, कभी अपना इखलाक खराब ना करें। औरत की खूबी क्या है कि वो अपनी बात बयान ना ही कर सके। कहते हैं कि औरत के आंसू वो काम करवा लेते हैं जो मर्द के अल्फाज नहीं करवा पाते। कभी खुदा न खास्ता आपका किसी से झगड़ा हो ना, अब झगड़े से मुराद वो हाथापाई नहीं है, जस्ट लाइक डिस्प्यूट, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आप खामोश हो जाए। यकीन कीजिए, आपका घर भी सलामत, आपकी इज्जत भी सलामत, कुछ साल में वो शौहर आपके गुन गाएगा, आपके नाम के कलमे पड़ेगा, लेकिन पहले आप उसका पढ़े। जो औरतें घर जाते ही मर्द को खिदमत से जीती हैं, प्यार से जीती हैं, मोहब्बत से जीती हैं, बस एक दो साल के बाद वो शौहर उनका गुलाम होता है अल्लाह के हुक्म से। और जो शुरू से जाके मुकाबलेबाजियों पे आ जाती है ना, वो नहीं बसती, फिर कोई जन्नत से ही आएगा तो बसाएगा उनको। तो अपनी बच्चियों को यही सबक दे के भेजें कि बेटा सुनो, बेटा बर्दाश्त करो। और अंदर फिर मैं देखती हूँ कि इसमें बच्चियों का भी कसूर नहीं है, खुद पसंदी है, हम बड़े हैं, हमें सब पता है, हम अकलमंद हैं, हम ये हैं। और अल्लाह ना करे अगर उसके साथ वेस्ट का लफ्ज आ गया, फिर तो बस और ही सोने पे सुहागा। क्या बड़ी बात है, आप यहां जो बच्चियां बैठी हैं, अगर आपकी शादी पाकिस्तान के किसी गांव में हो जाए तो नहीं जाके रहेंगी? रहेंगी ना, क्यों नहीं रहेंगी, वहां इंसान रहते हैं, बिजली जाएगी ना, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्या तकलीफ होगी, पानी मैला होगा थोड़े दिन में, देखिए आपका स्टमक ठीक होगा। लेकिन जब आप अपने घर में खुश होंगी ना, आपको इन चीजों की परवाह भी नहीं रहेगी। और वल्लाह ये मैं आपको सच कहूं कि गांव की बच्ची अमेरिका जैसे एडवांस मुल्क में भी आ जाए ना, अगर उसको खुश नहीं रहना तो वो खुश नहीं रहेगी। वो वहां बैठ के कहेगी, मुझे यहाँ मट्टी नहीं नजर आती, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। हमेशा जिंदगी में ये असूल बनाए, नरम चीज अपनी जगह बनाती है। अल्लाह ताला ने देखी जुबान को नरम ना, उसमें हड्डी नहीं है, और दिल उसमें भी हड्डी नहीं है, ये दो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं कि बोनलेस हैं। जुबान भी नरम रखिए, दिल भी नरम रखें। जुबान की नरमी क्या है, वो बाद में आएगी, पहले दिल नरम करें। आप खुद अपने ऊपर लें, बल्कि आप में से जो 30-40 ईयर से माशाल्लाह मैरिड है, अल्लाह आपके सबके शौहरों को सलामत रखे, आप दिल से माने अपने हस्बैंड को, दिल में आप उनके लिए लाएं, जैसे भी हैं, आप उनकी खूबी ढूंढें, आपको खूबी नजर आएगी। और आप खामी ढूंढेंगी ना, तो आपको एक नहीं 10 दिखेंगी। तो इंसान को इंसान समझें, इंशाल्लाह दिल नरम हो गया, आपकी जुबान खुद बखुद उसके लिए नरम होगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें वाकई गैरु मुबीन बना दे फिल खिसाम, हमें बात ही ना करनी आए। यही सबक अल्लाह ने आपको मुझे पढ़ा दिए इन आयतों में।